वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण के अंतर्गत किए गए रिकॉर्डिंग में अब आप आगे की रिकॉर्डिंग सुने। प्रशांत मंडल, डोल ड्रम्स। प्रशांत मंडल औसत रूप में विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी में वर्ष भर प्रचंड गर्मी पड़ने के कारण वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल में ऊपर की ओर उठती हैं। वास्तव में इस पेटी की स्थिति दोनों गोलार्धों के व्यापारिक पवनों के मध्य होती है। वायु दाब प्रवणता मंद होने के कारण यहाँ पवन मंद गति से विभिन्न दिशाओं से चला करता है। दिन के लगभग एक तिहाई भाग में वायुमंडल बिल्कुल शांत रहता है। दिन के तीसरे पहर संवहन धाराओं की प्रचंडता के कारण प्रबल तड़ित झंझा हैवी थंडर स्ट्रॉम की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही तीव्र वायु के झोंके भी आया करते हैं। भूमध्य रेखा के समीप दोनों गोलार्धों से आने वाले व्यापारिक पवनों का अभिसरण कन्वर्जेंस होने से इस पेटी को भूमध्य रेखी अभिसरण पेटी अथवा अंतर उष्ण अभिसरण कटिबंध इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहा जाता है। पहले प्रशांत मंडल अर्थात डोलड्रम के संबंध में यह धारणा थी कि वह भूमध्य रेखीय निम्न दाब गर्त में अल्पतम दाब की धुरी पर स्थित होता है, जहाँ वायु दाब प्रवणता साधारणतः कमजोर तथा परिवर्तनशील होती है। यहाँ की उप आद्र उष्णाद्र वायु में अस्थिरता उत्पन्न होने के कारण संवहन धाराओं से मेघ बनते हैं, जिनसे वृष्टि होती है। किंतु आधुनिक निरीक्षणों के द्वारा ज्ञात होता है कि डोलरम के सभी विशेषताएं विषुवत रेखीय प्रदेश के कुछ भागों में ही सीमित हैं और वर्ष के कुछ भागों में ही ऐसी दशाएं उत्पन्न होती हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र के कुछ स्थानों में प्रशांत मंडल का लोप हो जाता है, किंतु कभी विशेष परिस्थितियों में इस मंडल का असाधारण रूप से विस्तार भी हो जाता है। क्रोवी ने ऐसे तीन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहां प्रशांत मंडलीय दशाएं पाई जाती हैं। हिंद महासागरी प्रशांत मंडल, दूसरा पश्चिमी अफ्रीका के भूमध्य तटवर्ती क्षेत्र, तीसरा मध्यवर्ती अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र। इसमें हिंद प्रशांत महासागरी प्रशांत मंडल सर्वाधिक विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल 2.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर तथा इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। इस प्रदेश में विभिन्न तापमान तथा घनत्व वाली वायु राशियों के बीच पाए जाने वाले वाताग्रकों को अधिकांश वैज्ञानिक अंतरउष्ण वाताग्र इंटरट्रॉपिकल फ्रंट अथवा संक्षेप में ITF कहते हैं, जबकि कुछ इन्हें इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस कहना अधिक तर्कसंगत मानते हैं। किंतु त्रिवार्था ने अंतर उष्ण अभिसरण के संबंध में उपलब्ध साहित्य को परस्पर विरोधी तथा भ्रांतिपूर्ण माना है। सन्मार्गी पवन पेटियां, ट्रेड विंड बेल्ट। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री उत्तरी। इस लाइन की रिकॉर्डिंग आप दोबारा सुन लें। सन्मार्गी पवन पेटियां, ट्रेड विंड्स बेल्ट। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के दोनों ओर 5 डिग्री तथा 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच सन्मार्गी पवन की पेटियां पाई जाती हैं। दोनों गोलार्धों में स्थित अश्व अक्षांशों हार्श लैटिट्यूड से भूमध्य रेखा की ओर उत्पन्न वायुदाब प्रवणता के कारण इन सन्मार्गी अथवा व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाला पवन अपने पथ की दाईं ओर मुड़कर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अग्रसर होता है, जिससे इस उत्तरी पूर्वी सन्मार्गी पवन कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में अपने पथ की बाईं ओर मुड़ने से इन पवनों की दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है, अतः इन्हें दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवन की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये हवाएं एक निश्चित गति तथा निश्चित दिशा से चला करती हैं, जिसमें प्राचीन काल में समुद्र पर नाव से पश्चिम की ओर यात्रा करने में बड़ी सहायता मिला करती थी। इसके अतिरिक्त इस पवन पेटी में मौसम प्रायः साफ रहा करता था, अतः नाविक इन पवनों को काफी महत्व देते थे। किंतु आधुनिक काल में इन पेटियों में समुद्री जहाजों तथा वायुयानों से यात्रा करना सुरक्षित नहीं समझा जाता, क्योंकि कभी कभी समुद्र के कुछ भागों में भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से खतरा रहता है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों में, जिनका विस्तार 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है, विषुवत रेखी प्रशांत मंडल की ही भांति पवनों का अभाव पाया जाता है। इस क्षेत्र में या तो वायुमंडल बिल्कुल शांत रहता है या हल्की हवाएं विभिन्न दिशाओं से चला करती हैं। ज्ञातव्य है कि उपोष्ण वायुदाब की पेटी विभिन्न कोशों सेल्स में विभक्त होती है। ये उच्च दाब के सेल्स महासागरों पर स्थित होते हैं, जिनसे भूमध्य रेखा अथवा उपध्रुवी निम्न दाब क्षेत्रों की ओर पवन प्रवाहित होते हैं। उच्च दाब क्षेत्रों अथवा प्रतिचक्रवातों में मौसम साफ रहता है तथा वायुमंडल में शुष्कता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वायु के नीचे उतरने से उनका तापमान निरंतर बढ़ता जाता है। उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाले ट्रेड वेन्स को लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इस मार्ग के विभिन्न भागों में इन पवनों के तापमान, आर्द्रता तथा घनत्व आदि में अंतर पाया जाता है। ये पवन अपने उत्पत्ति स्थान के निकट वायु के अवतलन एवं अपसरण के कारण प्रायः शुष्क होते हैं तथा मौसम साफ रहता है। अवतलन के कारण वायुमंडल में तापमान व्युत्क्रमणता टेम्परेचर इन्वर्जन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ वायुमंडल में अस्थायित्व स्टेबिलिटी पाया जाता है तथा ट्रेड विंड्स के इस भाग में उष्णकटिबंधीय वायु राशियों की उत्पत्ति होती है, किंतु भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होने के साथ ही गर्म सागर तल पर चलने से इन पवनों के तापमान एवं आर्द्रता में वृद्धि होने लगती है, जिससे इनके अस्थायित्व का ह्रास होने लगता है। उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी भागों में यहाँ की अस्थायी वायु राशियों में उष्मागतिक मार्जन थर्मोडायनामिक मॉडिफिकेशन होने से वायु की मोटी परत में अस्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वर्षा के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। स्मरणीय है कि महासागरों के ऊपर चलने वाली सन्मार्गी हवाएं अर्थात ट्रेड विंड्स पृथ्वी के सभी पवनों की अपेक्षा अधिक स्थिर पाई गई हैं। दक्षिणी अटलांटिक के मध्य भाग में ये हवाएं वर्ष भर रात दिन समान वेग एवं निश्चित दिशा में चला करती हैं। इस क्षेत्र में इनका औसत वेग लगभग 15 नॉट होता है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में इन पवनों में इतनी अधिक स्थिरता पाई जाती है। वायुमंडल की अन्य गतियों की भांति सन्मार्गी पवनों में भी अनियमितताएं पाई जाती हैं। स्थिरता के लिए प्रसिद्ध इन पवनों को कभी कभी विस्तृत क्षेत्रों में अनुपस्थित पाया जाता है। तटवर्ती क्षेत्रों में इन पर सागर एवं स्थल समीर का प्रभाव पड़ता है। इन पवन की पेटियों के किनारे पर स्थित क्षेत्रों में वायुदाब पेटियों के विस्थापन के कारण सन्मार्गी पवनों में मौसमी परिवर्तन अथवा अन्य गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। सन्मार्गी पवनों में दूसरी अनियमितता का संबंध उपोष्ण कटिबंधीय प्रतिचक्रवातों से है। इस पेटी में न्यून दाब गर्तों के द्वारा विभाजित अनेक भ्रमणशील प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। इन न्यून दाब गर्तों के अधिक प्रबल होने पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पृष्ठ भाग से ध्रुवीय हवाएं इनकी ओर आकृष्ट होती हो जाती हैं तथा सन्मार्गी पवनों में मिल जाती हैं। पवनों के वेग में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तथा भूमध्य रेखा तक इनके द्वारा हल्की वर्षा होती है। इन पवन की पेटियों में अथवा निकटवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण भीषण तूफान आते हैं। सन्मार्गी पवनों की गहराई काल और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, किंतु इनकी औसत गहराई 1500 से 3000 मीटर मानी जाती है। उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब क्षेत्र के निकट तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में इनकी गहराई अपेक्षाकृत अधिक होती है, किंतु पछुआ पवनों की अपेक्षा सन्मार्गी पवनों की गहराई कम होती है। पछुआ पवन की पेटियां वेस्ट विंड बेल्ट्स। पछुआ पवनों की पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 35 से 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अश्वाक्षांशों के ध्रुवीय किनारों से दोनों गोलार्धों में स्थित उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवन प्रवाह होता है। कोरियोलिस बल के कारण ये पवन अपने पथ से मुड़कर उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पवनों का रूप धारण कर लेते हैं। वास्तविक निरीक्षण के आधार पर यह देखा जाता है कि पछुआ पवनों की पेटी में ध्रुवीय पवनों का भी अतिक्रमण होता रहता है। इसके अतिरिक्त इस पेटी में चक्रवात के चलने के कारण पवन की दिशा में परिवर्तन भी होता रहता है, किंतु इस पेटी में सामान्य पवन प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इस पेटी में चक्रवातों के कारण मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। इस पेटी में लगातार कई दिनों तक अवकाश छाए रहते हैं तथा वर्षा होती रहती है। उत्तरी गोलार्ध में विशाल महाद्वीपों की उपस्थिति के कारण पछुआ पवनों के मार्ग में बाधा पड़ जाती है तथा ये कम हवाएं कमजोर हो जाती हैं, किंतु दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों की प्रमुखता तथा स्थलखंडों के अभाव के कारण पछुआ हवाएं निरंतर बड़े वेग से चला करती हैं। इन हवाओं के प्रबल वेग के कारण समुद्री यात्रियों ने इन्हें गरजने वाली 40, रोडिंग 40, क्रुद्ध 50, फ्यूरियस 50 तथा चीखने वाली 60, श्रिंकिंग 60 आदि नामों से संबोधित किया है। प्राचीन काल में दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की स्थिरता का लाभ उठाने के लिए दक्षिणी आंध्र महासागर से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि की ओर नावों से यात्रा की जाती थी। पछुआ पवनों की पेटी की ध्रुवीय सीमाओं का विस्थापन न केवल मौसमी अपितु अल्पकालिक भी होता है। पवनों का वेग बदलता रहता है। इन पवनों का वेग या तो अधिकतम या फिर न्यूनतम होता है। इस प्रकार ये पवन अतिशयता प्रधान होते हैं। इन पवनों का वेग अधिकतर बोफोर्ट मापक के अनुसार 3 से 7 तक होता है। स्पष्ट है कि पछुआ पवन सामान्य रूप से सन्मार्गी पवनों की अपेक्षा अधिक प्रबल होते हैं। इस पेटी में चक्रवातों के पश्चिम से पूर्व की ओर निरंतर चलते रहने के कारण पछुआ पवनों की दिशा तथा इनकी प्रबलता में परिवर्तन होते रहते हैं। किसी स्थान विशेष की हवाओं का क्रम तथा वहां का मौसम, सब कुछ इन चक्रवातों के संदर्भ में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति विशेष के कारण पछुआ पवन प्रणाली में जटिलता उत्पन्न हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में पवनों का वेग कम होने के साथ ही उनकी स्थिरता भी कम हो जाती है, किंतु शीत ऋतु में पवनों का वेग बढ़ जाता है। इस पवन पेटी के ध्रुवीय किनारों की ओर विभिन्न वायु राशियों के मिलने से ध्रुवीय वाताग्रहों पोलर फ्रंट्स का निर्माण हो जाता है। इन ध्रुवीय वाताग्रहों पर ही अनेक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि शीतकाल में ध्रुवीय एवं उष्ण कटिबंधीय वायु राशियों के तापमान, वायुदाब तथा अन्य विशेषताओं में अधिकतम अंतर पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि इस पवन पेटी के ध्रुवीय किनारों अधिक तूफानी तथा परिवर्तनशील मौसम वाले होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की दशाएं सर्वथा विपरीत होती हैं। वहां उच्च अक्षांशों में स्थलखंडों के अभाव के कारण महासागरों पर पछुआ हवाएं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अबाध गति से घनघोर गर्जन करती हुई चलती हैं। दक्षिणी ध्रुव की ओर इनका वेग निरंतर बढ़ता जाता है। अतः प्राचीन काल के नाविकों के द्वारा इन पवनों के लिए प्रयुक्त पद जैसे गरजने वाली चालीसा तथा क्रुज पचासा आदि सार्थक प्रतीत होते हैं। ध्रुवीय पवन पोलर विंड्स। ध्रुवीय उच्च वायु दाब क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर चलने वाले पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी कहे जाते हैं, किंतु ध्रुवीय क्षेत्र में ऋतु निरीक्षण केंद्रों के अभाव के कारण जलवायु के विभिन्न तत्वों के प्रत्यक्ष निरीक्षण में अभी तक पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है। इस कारण से ध्रुवीय क्षेत्रों के पवन के संबंध में ऋतु वैज्ञानिक में मतभेद है। यूएस ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वायुदाब चार्ट के अनुसार उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच पूर्वी पवन मुख्य रूप से चलते हैं, किंतु रूसी मौसम विशेषज्ञ यहाँ पछुआ पवनों की प्रधानता के पक्ष में हैं। दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्रों में जलवायु संबंधी आंकड़ों का अपेक्षाकृत अधिक अभाव होने के कारण वहां प्रचलित पवनों का विवरण देना और भी कठिन हो जाता है। हिमाच्छादित दक्षिणी ध्रुव प्रदेश के ऊपर तापी कारणों से प्रतिचक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, किंतु इन प्रतिचक्रवातों के विस्तार, इनकी स्थिति तथा गहराई के संबंध में मौसम वैज्ञानिकों में बड़ा मतभेद है, किंतु इस बात को सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि यहाँ अस्थायी महाद्वीपीय प्रतिचक्रवात नहीं पाया जाता है। अंटार्कटिक के विशाल पश्चिमी किनारे पर अनेक भ्रमणशील प्रतिचक्रवात पाए जाते हैं। इन प्रतिचक्रवातों की प्रबलता के कारण ही समीपवर्ती पछुआ हवा की पेटी में उत्पन्न चक्रवातों का इधर प्रवेश नहीं हो पाता, किंतु दक्षिणी ध्रुव के विभिन्न अन्वेषकों ने इस प्रदेश में चलने वाली तेज बर्फीली आंधियों की भी सूचना दी है। आर्कटिक प्रदेश महासागर पर स्थित होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक जटिल है। शीतकाल में उत्तरी महासागर के ऊपर हिम की कठोर और मोटी परत जम जाती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में यह आंशिक रूप से खुला रहता है। यह क्षेत्र चारों ओर महाद्वीपों से घिरा हुआ है तथा बीच बीच में द्वीप पुंज भी पाए जाते हैं। शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी साइबेरिया, उत्तरी कनाडा तथा ग्रीनलैंड के मध्यवर्ती भाग पृथ्वी पर सर्वाधिक ठंडे क्षेत्रों में पाए जा क्षेत्र हो जाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक उच्च वायुदाब पेटी इस बेसिन को ध्रुव से बेरिंग जलडमरू मध्य की ओर पार करती है, जिसके द्वारा एशियाई और अमेरिकी प्रतिचक्रवात परस्पर मिल जाते हैं। इनके बीच का वायुदाब महाद्वीपों की अपेक्षा कम तथा महासागरों पर स्थित आइसलैंड तथा अलिशियन निम्न दाब क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है। इसे आर्कटिक पवन विभाजक आर्कटिक विंड शेड कहते हैं। इसके द्वारा उत्तरी पूर्वी हवाएं उपर्युक्त दोनों प्रणालियों से अलग की जाती हैं। शीत ऋतु में महासागरीय न्यून दाब क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में पवन वेगगामी तथा मौसम तूफानी होता है। केंद्रीय के अनुसार आर्कटिक प्रदेश के प्रशांत महासागरीय भाग में मौसम साफ तथा पवन का वेग सामान्य होता है। शीत ऋतु में साइबेरिया तथा कनाडा आदि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में वायुदाब कम हो जाता है, किंतु आर्कटिक प्रदेश में प्रतिचक्रवात स्थापित हो जाता है, जहां से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। ध्रुव के निकट पवन प्रबल वाताग्र पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में विभिन्न मौसमों में चलने वाले पवनों की दिशा का व उनका वेग वहां की स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित होता है। त्रिकोशीय रेखांशिक परिसंचरण, ट्राई सेलुलर मेरिडियोनल सर्कुलेशन। आवर्तनशील पृथ्वी के तल पर विशुद्ध तापीय कारणों से उत्पन्न एक कोशीय पवन संचरण व्यवस्था का लोप हो जाता है। इसके स्थान पर प्रत्येक गोलार्ध में त्रिकोशीय रेखांशिक संचरण की स्थापना हो जाती है। पृथ्वी तल पर तापीय तथा गत्यात्मक कारणों से वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं, जिनका विस्तृत विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। क्योंकि पवन प्रवाह वायुदाब प्रवणता के द्वारा नियंत्रित होता है, अतः वायुदाब के वास्तविक वितरण के आधार पर दोनों गोलार्धों में नियत वायु पवनों की कुल 6 पेटियां पाई जाती हैं। भूतल पर स्थित पवनों की प्रत्येक पेटी में धरातलीय, उच्च वायुमंडलीय तथा ऊर्ध्वाधर पवन गतियों के द्वारा वायुमंडलीय परिसंचरण के एक स्वतंत्र कोष का निर्माण होता है। वायुमंडलीय परिसंचरण प्रणाली की विवेचना करते समय ऊष्मा इंजन की भांति उसके ऊष्मा तथा शीतलता के स्रोत हीट एंड कोल सोर्सेस को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि वायुमंडल में होने वाली संघनन की प्रक्रियाओं के द्वारा भारी मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है, अतः इसे ही ऊष्मा का स्रोत मानना चाहिए। दूसरी ओर विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊपरी वायुमंडल की ऊष्मा की जो क्षति होती है उससे शीत स्रोत प्राप्त होता है। विषुवत रेखी प्रशांत मंडल तथा उपध्रुवी न्यून वायुदाब की पेटियों को छोड़कर ऊपरी वायुमंडल सर्वत्र परिसंचरण के लिए आवश्यक शीत स्रोत का कार्य करता है। प्रत्येक गोलार्ध में वायुमंडलीय परिसंचरण के निम्नलिखित 3 कोष पाए जाते हैं, जिनमें पवन धारा का प्रवाह मुख्य रूप से देशांतर रेखाओं के समांतर होता है। पहला सनमार्गी पवन पेटी स्थित हेडले कोष, दूसरा पछुआ पवन पेटी स्थित मध्यवर्ती कोष तथा तीसरा ध्रुवीय परिसंचरण कोष। परिसंचरण के सन्मार्गी पवन पेटी स्थित हैडले कोष में भूमध्य रेखा के निकट सूर्याभिताप की अधिक मात्रा उपलब्ध होने के कारण धरातल गर्म हो उठता है, जिससे उसके निकट की वायु गर्म होकर फैल जाती है। आयतन में वृद्धि होने के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले वायुमंडल की प्रतिबंधी अस्थिरता कंडीशनल इनस्टेबिलिटी भी संवहन धाराओं के उत्थान में सहायक होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में इस प्रकार ऊपर उठी वायु राशियां क्षोभ मंडल की बाह्य सीमा पर पहुंचकर ऊपरी वायुमंडल में उत्पन्न वायुभार प्रवणता के कारण ध्रुवों की ओर चल पड़ती हैं। इन पवन धाराओं की दिशा धरातल के निकट चलने वाले सन्मार्गी पवनों की दिशा के विपरीत होती हैं। अतः इन्हें प्रति सन्मार्गी पवन एंटी ट्रेड्स कहा जाता है। इन पवन धाराओं का तापमान 30 डिग्री अक्षांश के निकट विकिरण के कारण इतना कम हो जाता है कि इनका घनत्व बढ़ जाता है तथा इनका कुछ भाग नीचे धरातल की ओर उतरने लगता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से इस अक्षांश के निकट ऊपरी पवन धाराओं की दिशा ध्रुवों की ओर न होकर अक्षांश रेखाओं के समांतर हो जाती है। इसके फलस्वरूप 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के निकट ऊपरी वायुमंडल में वायु राशियां एकत्रित हो जाती हैं। इस कारण धरातल पर उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। ऊपरी पवन धाराओं का कुछ भाग सीधे ध्रुवों की ओर प्रवाहित होता चला जाता है। अश्वक्षांश पर अवरोही वायु का कुछ भाग विषुवत रेखा की ओर अग्रसर होता है। इसी कटिबंध की ध्रुवी सीमा से कुछ वायु ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगती है। विषुवत रेखा की ओर चलने वाली पवन धाराएं फेरल्स के नियमानुसार उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः अपने दाएं तथा बाएं मुड़ जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में ट्रेड विंड्स उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होता है। धरातल के निकट ट्रेड विंड्स उनके ऊपर चलने वाले एंटी ट्रेड विंड्स विषुवत रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न आरोही पवन तरंगे तथा अश्वक्षांशी अवरोही पवन तरंगे मिलकर सन्मार्गी पवन पेटी स्थित प्रथम परिसंचरण कोष का निर्माण करती हैं। इस कोष को प्रत्यक्ष कोष भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पवन धाराएं ऊष्मा स्रोत से शीत स्रोत की ओर चलती हैं। इसी कोष को हैडले कोष हैडले सेल भी कहा जाता है। परिसंचरण का द्वितीय कोष अश्वक्षांश तथा 60 डिग्री अक्षांश उपध्रुवी न्यून वायुदाब क्षेत्र के मध्य पछुआ पवन पेटी में स्थित है। अश्वक्षांशी उच्च दाब क्षेत्र से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली पवन धाराएं विक्षेपक बल के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में क्रमशः अपने पथ के दाएं तथा बाएं मुड़ जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती हैं। ये उष्ण पवन धाराएं जब ध्रुवों की ओर से आने वाले शीतल और भारी पवनों से मिलती हैं, तब वहां वाताग्रकों फ्रंट्स का निर्माण हो जाता है। उष्ण पछुआ हवाएं शीतल और भारी ध्रुवी पवनों के ऊपर क्रमशः उठती हैं। अतः इन पवनों के संगम पर वायुमंडल में संघनन की प्रक्रिया पाई जाती है, जिससे मेघ निर्माण तथा वर्षा होती है। इस पेटी में भी पवन के ऊपर उठने में संघनन का मुक्त ताप लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन सहायक होता है। ऊपर उठी वायु का कुछ भाग ध्रुवों की ओर तथा शेष भाग विषुवत रेखा की ओर मुड़ जाता है। द्वितीय परिसंचरण कोष की प्रमुख विशेषता यह है कि धरातल के निकट तथा उसके ऊपर पवन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। इस पेटी में ऊपरी वायुमंडल में पछुआ पवनों की उपस्थिति एक अत्यधिक जटिल तथा विवादास्पद विषय है। अधिकांश मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ट्रेड विंड्स कोस तथा ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर चलने वाली तेज पछुआ हवाएं पछुआ पवन धाराओं के घर्षण जनित खिंचाव फ्रिक्शनल ड्रैग के कारण ही मध्यवर्ती कोस के ऊपर पछुआ हवाएं चला करती हैं। इस कोस को अप्रत्यक्ष कोस इनडायरेक्ट सेल कहा जाता है। उपोष्ण पवन की हवाओं का कुछ भाग नीचे उतरता है। अवरोहण के समय उपयुक्त कोषों में की पवन तरंगे एक दूसरे को काटती हैं, किंतु धरातल पर एक ही देशांतर में दो विपरीत वायुधाराएं एक दूसरे को नहीं काटती। अश्वच्छांश में स्थित विभिन्न प्रतिचक्रवात के पश्चिम भाग में विषुवत रेखा की ओर से हवाएं ध्रुवों की ओर चलती हैं तथा इन्हीं प्रतिचक्रवातों के पूर्वी किनारों से मध्यवर्ती कोष की हवाएं विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। रेखांशिक परिसंचरण का तृतीय कोष 60 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश में तथा ध्रुवों के मध्य पाया जाता है। इस कोष के ऊपर पवन धाराओं ध्रुवों की ओर तथा धरातल के निकट विषुवत रेखा की ओर चला करती हैं। प्रथम कोष के ऊपर चलने वाली हवाएं मध्यवर्ती कोष के ऊपर के पवनों से मिलकर प्रबल हो जाती हैं तथा तृतीय कोष के ऊपर प्रवाहित होती हुई ध्रुवों तक पहुंचती हैं। ध्रुवों के निकट पहुंचने पर ये हवाएं शीतल तथा भारी होकर नीचे धरातल की ओर उतरती हैं। इस तृतीय कोष को भी प्रत्यक्ष कोष डायरेक्ट सेल कहा जाता है। रेखांशिक पवन संचार प्रणाली का महत्व सिग्निफिकेंस ऑफ मेरिडोनल सर्कुलेशन। यद्यपि धरातल पर पवन संचार प्रणाली मुख्य रूप से कटिबंधी जोनल है, फिर भी अक्षांतरीय ताप संतुलन में वायु के रेखांशिक अवयव मेरिडोनल कंपोनेंट का जलवायु की दृष्टि से विशेष महत्व है। केंड्रियू के अनुसार रेखांशिक विनिमय के सर्वाधिक प्रभावकारी वायु प्रभावकारी मार्ग वायु दाब की अनियमितताओं इरेगुलरिटीज तथा उच्च एवं निम्न दाब केंद्रों के द्वारा अधिक उपलब्ध होते हैं। भूतल पर स्थित विभिन्न अभिसरण तथा अपसरण के क्षेत्र एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस रेखांशिक पवन प्रवाह के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूतल पर अभिसरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक अखंडित पेटी अंतरोष्ण अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के रूप में पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी में अपसरण के कारण अपसरण के अनेक क्षेत्र पाए जाते हैं जो रेखांशिक पवनों के प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अभिसरण तथा अपसरण के इन स्थानीय क्षेत्रों के द्वारा विश्व की जलवायु में अनेक जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ध्रुवीय वातावरण पर उत्पन्न शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के पृष्ठभाग में चलने वाली पवन धाराएं ध्रुवीय वायु राशियों के उपोष्ण कटिबंधीय कटगों रिजेज के बीच से होती हुई ट्रेड विंड से मिला देती हैं। स्मरणीय है कि उपोष्ण कटिबंधीय कटकों के अंतराल से विषुवत रेखी तथा ध्रुवीय वायु राशियों का आदान प्रदान होता रहता है। विभिन्न प्रतिचक्रवातों के मध्य ध्रुवीय निम्न दाब द्रोणिकाएं ट्रफ्स स्थित होती हैं, जिनमें होकर उत्तरी गोलार्ध में प्रत्येक प्रतिचक्रवात के अग्रभाग अथवा पूर्व की ओर पवन का प्रवाह विषुवत रेखा की ओर तथा पृष्ठभाग अथवा पश्चिम की ओर से ध्रुवों की ओर होता है। इस प्रकार निम्न अक्षांशों में क्षोभ मंडल के मध्य अथवा ऊपरी भाग में अनेक रेखांशिक वायुमंडलीय उपद्रव होते हैं। इस प्रकार पवन धाराओं के अक्षांश रेखीय प्रवाह के बावजूद वायु राशियों का उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर रेखांशिक प्रवाह होता रहता है। इस प्रकार ऊष्मा के स्थानांतरण में धरातलीय पवन प्रवाह के साथ ही उच्च स्तरीय पवन प्रवाह का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जेट स्ट्रीम्स। क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में धरातल से 6000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाइयों के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली परिध्रुवी सर्कमपोलर पवन धाराओं को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। ये पवन धाराएं दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों तक वर्ष भर निरंतर चला करती हैं। इन उच्च स्तरीय पवन धाराओं की खोज का श्रेय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बमवर्षक विमान चालकों को प्राप्त है। जब अमेरिकी विमान चालक B-29 बमवर्षक विमानों को लेकर ऊंचाइयों पर जापान की ओर उड़ाने भरते थे, तब उन्हें अप्रत्याशित रूप से प्रबल वेग वाली पवन धाराओं का सामना करना पड़ता था, जिससे उनके विमानों की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी। कभी कभी विमान आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। इसके विपरीत अमेरिका की ओर लौटते समय उन्हीं विमानों के प्रारंभिक वेग में अचानक वृद्धि हो जाया करती थी। इस घटना के संबंध में मौसम वैज्ञानिकों ने वायुमंडल की इन ऊपरी परतों के संबंध में खोज का कार्य प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप इस वेगवती पवन धाराओं का पता लगा। पूर्ण विकसित अवस्था में ये पवन धाराएं वस्तुतः जेट जैसी होती हैं। स्टेलर के अनुसार अनुप्रस्थ काट में जेट स्ट्रीम की तुलना होज में बहती हुई एक ऐसी जलधारा से की जा सकती है जिसके अधिकतम वेग की केंद्र रेखा अपेक्षाकृत मंद प्रवाह वाले जल के समकेंद्रीय वृत्तों से घिरी हो। इस प्रकार ऊपरी क्षोभ मंडल में विसर्पण करने वाली संकीर्ण एवं प्रबल वेग वाली वायुधाराओं को ही जेट स्ट्रीम की संज्ञा प्रदान की गई है। केंड्रियू ने जेट स्ट्रीम शब्दावली का प्रयोग दोनों गोलार्धों की उच्च स्तरीय पछुआ पवनों के बीच पाई जाने वाले शक्तिशाली पवन पेटी के लिए किया है। जेट स्ट्रीम के प्रमुख अनुसंधान कर्ता रॉसबी के अनुसार प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर लहरदार प्रणाली में पूरब की ओर विसर्पण करती हुई एक चौड़ी पवन सरिता को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस पवन सरिता की गतिज ऊर्जा प्रचंड वायु वेग की ऐसी सक्रिय पेटी में संकेंद्रित होती है जिसके चारों ओर वायुमंडल अपेक्षाकृत शांत रहता है। विश्व ऋतु वैज्ञानिक संगठन द्वारा जेट स्ट्रीम की अधोलिखित प्रमाणिक परिभाषा प्रस्तुत की गई है। जेट स्ट्रीम लगभग समानांतर चपटी एवं नलिका तुल्य धारा है जो क्षोभ मंडल सीमा के निकट प्रवाहित होती है। इसका अक्ष अधिकतम वेग की दिशा में होता है। इसका प्रमुख लक्षण केवल प्रचंड वायु वेग ही नहीं वरन अनुप्रस्थ वायु अरूपण भी है। सामान्यतया जेट स्ट्रीम हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी तथा कई किलोमीटर ऊंची होती है। इसकी धुरी के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम वायु वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम की स्थिति भूमध्य रेखा के अधिक निकट हो जाती है तथा ये 20 डिग्री अक्षांश के निकट तक प्रवाहित होती है। इन पवन धाराओं का वेग भी ऋतु के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में इनका औसत वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। इन पवन धाराओं का वेग इनकी दिशा की अपेक्षा अधिक परिवर्तनशील होता है। इनके मध्य भाग में वायु का औसत वेग शीत ऋतु में 64 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ग्रीष्म ऋतु में केवल 24 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, किंतु इन संकीर्ण पवन धाराओं की धुरी के निकट पवन का वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाता है। ज्ञातव्य है कि जेट स्ट्रीम का सर्वाधिक औसत वेग धरातल पर स्थित उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्रों के ऊपर होता है तथा इनके स्थानांतरण के साथ ही जेट धाराएं भी स्थानांतरित होती रहती हैं। ट्रोपोपॉज के निकट इन धाराओं का वेग अधिकतम होता है, किंतु इनके मध्य भाग से दोनों ओर पवन के वेग में तीव्र गति से गिरावट आती है। ध्रुवों की ओर इनका वेग विशेष रूप से कम हो जाता है। यद्यपि जेट स्ट्रीम का प्रवाह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होता है, किंतु प्रायः इनमें उत्तर से दक्षिण की ओर दीर्घ तरंगे भी उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इनकी संभार रेखाएं सर्पाकार होती हैं। अक्षांश एवं ऊंचाई के अनुसार इनमें दीर्घाकार वायु कटक तथा द्रोणी उत्पन्न होती हैं। जेट स्ट्रीम में उत्पन्न छोटी से छोटी तरंगों की लंबाई 6400 किलोमीटर तथा आयाम लगभग 880 किलोमीटर होता है। जेट स्ट्रीम की तरंगें ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूरब की ओर अग्रसर होती हैं, इनके आकार तथा विस्तार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। इनकी शक्ति भी क्रमशः क्षीण होती जाती है। अधिकांश तरंगों का पूर्ण विकास होने पर वे उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में फैल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप शीतल एवं उष्ण वायु राशियों का परस्पर आदान प्रदान संभव हो जाता है। कभी कभी भूमध्य रेखा की ओर फैली हुई तरंगों के अपनी मूल धारा से कट जाने के कारण उष्ण वायु राशि से घिरी हुई शीतल वायुपुंज से शीतल उच्च स्तरीय चक्रवात बन जाते हैं। इसके विपरीत ध्रुवों की ओर विस्तृत तरंगों के मूल धारा से कट जाने से उच्च स्तरीय प्रतिचक्रवातों का निर्माण हो जाता है। जेट स्ट्रीम पर धरातली उच्चावचन का प्रभाव। जेट स्ट्रीम एंड रिलीफ फीचर्स। धरातल की उच्च स्थलाकृतियों का जेट स्ट्रीम पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम के प्रवाह मार्ग में स्थित रॉकीज, एंडीज, पामीर तथा मध्य एशिया के पठारों का इस पवन धारा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इन पर्वतों अथवा पठारों के कारण जेट स्ट्रीम की कुछ तरंगे निश्चित भौगोलिक स्थितियों में लंगरित एंकर्ड हो जाती हैं। इन उच्च स्थलाकृतियों से घर्षण के कारण इन पवन धाराओं के प्रवाह में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि महाद्वीपों के उच्चावचन के कारण इन उच्च स्तरीय पवन धाराओं के मार्ग में बाधा उपस्थित हो जाती है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत तथा तिब्बत के ऊंचे पठारों के कारण जेट स्ट्रीम का प्रवाह बाधित हो जाता है तथा उसकी शाखाएं इन स्थलाकृतियों के उत्तर तथा दक्षिण प्रवाहित होने लगती हैं। ज्ञातव्य है कि ये दोनों शाखाएं हिमालय की पर्वतमालाओं से आगे बढ़कर चीन के ऊपर पुनः परस्पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अन्य महाद्वीपों में ऊंची पर्वत श्रेणियां एवं पठार जेट स्ट्रीम को प्रवाहित करती हैं। जेट स्ट्रीम का सूचक चक्र, इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम से संबद्ध पवन प्रवाह प्रणाली में प्रायः अनियमित परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु इन परिवर्तनों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अक्षांश रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम में पवन के वेग में साप्ताहिक परिवर्तन होते हैं। कभी कभी पवन का वेग सामान्य वेग का आधा हो जाता है। पवनों के वेग में क्षेत्रीय अथवा अल्पकालिक परिवर्तन तो कभी कभी तिगुना भी हो जाता है। विषुवत रेखा से लेकर ध्रुव वृत्त तक स्थानीय रूप से जेट धाराएं पाई जाती हैं, जेट धाराएं देखी जाती हैं। उच्च स्तरीय पछुआ पवनों के भ्रमिल वर्टिसेस में होने वाले संकुचन तथा प्रसरण के कारण जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा उसके आकार में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन की अवधि को ही सूचक चक्र, इंडेक्स साइकिल कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक चक्र को पूरा होने में 4 से 6 सप्ताह तक का समय लग जाता है। सूचक चक्र की 4 अवस्थाएं होती है। पहला, प्रथम अवस्था में जेट स्ट्रीम ध्रुवों के अधिक निकट स्थित होने के कारण इसे उच्च कटिबंधीय सूचक, हाई जोनल इंडेक्स कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूरब प्रायः सीधी प्रवाहित होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस पवन धारा के उत्तर में ध्रुवीय शीतल वायु राशि तथा दक्षिण की ओर सामान्यतः उष्ण वायु राशि पाई जाती है। धरातल पर पछुआ पवन का विस्थापन ध्रुवों की ओर हो जाता है। वायुभार प्रणाली पूरब पश्चिम फैली होती है। चक्रवातों की क्रियाओं के उच्च अक्षांशों में ही सीमित होने से उच्च एवं निम्न अक्षांशीय वायु राशियों का आदान प्रदान हो जाता है। दूसरा, द्वितीय अवस्था में जेट स्ट्रीम की तरंगों के आयाम में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा की ओर खिसक आती है। जेट स्ट्रीम के विसर्पण मियंडर्स में वृद्धि के फलस्वरूप शीतल ध्रुवीय वायु राशि भूमध्य रेखा के अधिक निकट तथा उष्ण कटिबंधीय वायु राशि ध्रुवों के अधिक निकट पहुंच जाती है। तीसरा, तरंगों में और भी वृद्धि होती है तथा जेट स्ट्रीम की स्थिति भूमध्य रेखा के अधिक निकट हो जाती है। इस अवस्था में शीतल एवं उष्ण वायु राशियों का भारी मात्रा में विस्थापन होता है। ऐसी स्थिति में तापमान प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट उत्तर दक्षिण न होकर पूर्व पश्चिम दिशा में पाई जाती है। चौथा, इस प्रकार के जेट स्ट्रीम की उत्तर तथा दक्षिण की ओर फैली हुई तरंगों के विच्छेदन से होता है। तरंगों के अत्यधिक विस्तार के कारण ही उनका जेट स्ट्रीम की मूल धारा से विच्छेद हो जाता है। निम्न अक्षांशीय ऊपरी वायुमंडल में शीतल ध्रुवीय वायु तथा उच्च अक्षांशों में उष्ण वायु विपरीत गुणों वाली हवाओं से घिर जाती है। जेट स्ट्रीम की इस विशेष स्थिति को निम्न कटिबंधीय सूचक, लो जोनल इंडेक्स कहते हैं। इस स्थिति में वायु राशियों में तापमान प्रवणता पूरब से पश्चिम की ओर पाई जाती है। पछुआ हवा कटिबंधीय न होकर अनेक कोशों में विभक्त हो जाती है। मौसम में कभी कभी इनका अधिक उलट फेर हो जाता है। मौसम में कभी कभी इतना अधिक उलटफेर हो जाता है कि अलास्का में फ्लोरिडा से अधिक तापमान अंकित किया जाता है। इसका मूल कारण उच्च स्तरीय वायुमंडल में उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में उष्ण वायुपुंज तथा दक्षिण की ओर शीतल वायुपुंज का पाया जाना है। धरातली मौसम पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव। जेट स्ट्रीम एंड सरफेस वेदर। धरातल पर पाए जाने वाले मौसम तथा जेट स्ट्रीम में घनिष्ठ संबंध होता है, किंतु स्वयं जेट स्ट्रीम के बदलते हुए स्वरूप के विषय में मौसम वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। वस्तुतः मौसम तथा जेट स्ट्रीम का पारस्परिक संबंध अत्यंत जटिल विषय है, जिसका यथार्थ ज्ञान ऋतुविज्ञों के सम्मुख आज तक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। ऋतु वैज्ञानिकों के अनुसार ध्रुवीय वाताग्र जहां पर चक्रवातों तथा तूफान का निर्माण होता है उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से संबद्ध होता है। अतः ध्रुवीय प्रकार के तूफानों तथा वृद्धि आदि पर इनका नियंत्रण होता है। शीतोष्ण कटिबंधी चक्रवातों के पूर्ण विकास की अवस्था में क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग तक विस्तृत होते हैं। पर्यवेक्षकों द्वारा ऐसा पाया गया है कि जब कभी मध्य अक्षांशीय चक्रवातों का मार्ग जेट स्ट्रीम के नीचे पड़ता है, तब उनका प्रचंडता में वृद्धि हो जाती है तथा वृद्धि की मात्रा भी अधिक हो जाती है। ऋतु वैज्ञानिकों के मतानुसार ये चक्रवात जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं उनके स्वरूप का निर्धारण करते हैं। चक्रवातों एवं प्रतिचक्रवातों के अतिरिक्त वायु राशियों के संचालन में भी जेट स्ट्रीम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिनके कारण कभी अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ता है। इन्हीं के कारण कभी मौसम असाधारण रूप से गर्म तो कभी अत्यधिक शीतल हो जाता है। केंद्रीय के मतानुसार जेट स्ट्रीम की पवन धाराओं में विद्यमान असाधारण दशाओं का पृथ्वी पर चलने वाले पवनों पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। जेट स्ट्रीम के आगे बढ़ने के साथ उसकी तरंगों के स्वरूप तथा उनकी क्रियाशीलता में परिवर्तन ध्रुवीय वाताग्रकों पर उत्पन्न मौसम तथा धरातली वायु भार प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार विषुवत रेखीय गर्त चक्रों से उत्पन्न मौसम भी इस जेट धारा से प्रभावित होता है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में होने वाली संवाहनिक वर्षा का संबंध जेट स्ट्रीम के दीर्घाकार विसर्पण मेंडर के भूमध्य रेखीय छोर से बताया जाता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जेट स्ट्रीम के विषय में अधिकाधिक जानकारी से हमें धरातली मौसम का ठीक ढंग से समझने में पर्याप्त सहायता मिल सकेगी। इस बात के प्रमाण है कि उच्च स्तरीय पवन धाराओं में उत्पन्न भंवरें नीचे उतरकर चक्रवाती मौसम को प्रभावित करती हैं। जल वर्षा, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, शीतलहरियाँ अथवा बर्फीले तूफान आदि सभी जेट स्ट्रीम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।